بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. زاني محترم، خود دکاسے کے اندر ہماری حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور گفتگو کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے شروع میں اس خطبے کے عزت و کبریائی کو بیان فرمایا کہ مخصوص ہے خداوند کریم کے لیے، اور خدا کسی سے بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اگر اس شخص، خدا کے علاوہ کوئی اور بھی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ رضاء عزت اور کبریائی کو اپنے لیے قرار دے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کے اتنا ہی مقرب بندہ ہی کیوں نہ ہو، خداوند کریم اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور سکتے ہیں کہ جتنی بھی اطاعت و فرمانبرداری ہے خداوند کریم کی، اس کے اساس اسی نقطے کے اندر ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور عبودیت کے ساتھ انسان جو ہے اپنی زندگی گزارے باقی مخلوقات، اور کوئی شخص بھی تکبر نہ کرے اور خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو قرار نہ دے. اور اس خطبے میں پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا جو اصل، جہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوا اور جہاں سے وہ بنیاد جو نافرمانبرداری کی جو رکھی گئی، اور عصیان جو خدا کا بندہ کریم کا کیا گیا، اس کی وجہ یہی تکبر تھا. اور اس کے دل کے، اس کے وجود میں وہ جو ایک نقطہ تھا اس حوالے سے کہ میں یعنی خدا کی اطاعت کو کامل طریقے سے، اس کے مقابلے میں کامل طریقے سے تسلیم نہ ہونے کے، جو ایک اندر اس کے دل میں ایک چیز پائی جاتی تھی، وہ خدا بندہ کریم نے اس امتحان کے ذریعے وہ سامنے لایا اور اس کو جو ہے راندہ درگاہ قرار دیا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر کہ خداوند کریم کا کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری ہو، کوئی خاص تعلق ہو، کہ وہ ابلیس جس نے 6000 سال عبادت کی تھی، اس نے جب تکبر کیا تو خداوند کریم نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، اس کو اپنی درگاہ سے باہر نکال دیا. تو ہم انسانوں کی جو بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت عبادت کے بعد کیا ہم یہ تکبر کر کے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم تکبر کریں گے اور اس تعصب سے کام لیں گے تو کیا خدا ہمارے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کہ قوانین الہی جو ہیں وہ سب کے لیے مساوی ہیں، اور اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. تو ان تمام طالب کے ایک اس کے بعد جو امام علیہ السلام یہاں پر پہنچتے ہیں اس خطبے کے حصے کے اندر، یہاں فرماتے ہیں الا فالحذر فالحذر فال الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم وکبرائکم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم والقوا الحجينة على ربهم وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه فإنهم قواعد أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادا ولا لفضله عندكم فسادا. فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے اس بخش کے اندر کہ تم لوگ بہت زیادہ، تم لوگوں کے حواس جو ہیں جم رہے ہیں، تم لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ الرٹ رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ خداوند کریم نہیں چاہتا کہ اس کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے. صرف انہی لوگوں کی اطاعت انسان کر سکتا ہے کہ یا تو خدا کی اطاعت، یا پھر ان بندگان خدا کی، ان اولیاء کی، کہ جو خود اس کے نمائندے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کی خداوند کریم نے انسان کو اجازت نہیں دی. اور یہاں پہ دوبارہ سے امام علیہ السلام اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت زیادہ اس بارے میں حساس رہنا، اور ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی اطاعت کرنا شروع کر دو کہ جو تمہارے معاشرے کے جو ایسے افراد، جو کہ جو ایسے لیڈر، ایسے وہ افراد جو کہ معاشرے کے بڑے افراد ہیں، لیکن ان کے اس کو ان کی بڑائی کا یا مثلا ان کی لیڈرشپ کا معیار جو ہے وہ تقوی الہی نہ ہو، وہ حق نہ ہو، بلکہ وہی تعصب جاہلیت کے بنیاد پر اور دوسرے معیارات کی بنیاد پر جو کہ باطل معیارات ہیں، اس بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا قرار دے تو ان لوگوں کی انسان اطاعت کرنے سے جو ہے پرہیز کرے. فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اپنے ان بزرگوں اور سرداروں کی اطاعت سے محتاط رہو کہ جنہوں نے اپنے حسب پر غرور کیا اور اپنے نسب کی بنیاد پر اونچے بننے کی کوشش کی. بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیا اور ان کے احساس एहसास और उसके एहसानात का सरीही इनकार कर दिया। उन्होंने इसके फैसले से मुकाबला किया और इसकी नेमतों पर गलबा हासिल करना चाहिए। यानी वो लोग जिनके बड़ाई का मेयार हक से हटा हुआ है और इन तम ये हसब और नसब के मेयार, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने उसको बड़ाई का मेयार करार दिया, उन लोगों की इताअत की तरफ नहीं जाना। फ़इन्नहुम कवाइदु असफ़ास अलअसबिया, कि ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं कि जो असबियत की बुनियाद हैं, फितने के सुतून हैं और जाहिलियत के गुरूर के तलवारें हैं, कि अगर इनकी तरफ तुम जाओगे तो पूरा माशरा जो है, सलाम इस तरह से इस पूरी सोसाइटी को, इस पूरे माशरे को अलर्ट कर रहे हैं कि इस तरफ जाने की कोशिश नहीं करना। ये दरहकीकत वही लोग हैं, इन्हीं के जरिए से फितना माशरे के अंदर आता है। ये फितने के सुतून है असबियत की और तासुब की। वो जो तासुब बातिल है, गलत जो तासुब है कि इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप की, अपनी बड़ाई के लिए जो है किसी का साथ दे और या किसी और को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, इस किस्म का जो तासुब है, ये लोग जो होते हैं, जो इस तरह के लीडर हैं माशरे के अंदर, जो इस बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझते हैं और चाहते हैं दोस्त दूसरे भी उन्हीं की हिमायत करें, ये दर हकीकत कवायद हैं, ये दर हकीकत बुनियाद हैं इस सबियत बातिल की। फरमाते हैं, फत्तकुल्लाह वला तकूनु अलैकुम अज़दादा, फिर खुदा से डरो और खबरदार उसकी नेमतों के दुश्मन और उसके दिए हुए फजाइल के हासिद ना बनो। अगर तुम देखो कि खुदा ने किसी को नेमत दी है, किसी को फजीलत दी है, किसी को जो है उसके एहसाना से नवाजा है, तो हसद में जो है मुबतला ना हो जाओ। जिस तरह से इसको इसी खुतबे के अंदर शुरू में बयान हुआ था कि किस तरह हसद की आग जो है, और हसद को भी बयान किया गया था कि उसका रीशा वही तकबर की तरफ पलटता है, उसके रूट्स जो है वही तकबर की तरफ पलटती है, कि किस तरह एक भाई ने दूसरे भाई का जो है कत्ल किया और उस संगीन गुनाह का जो है वो मुर्तकिब हुआ। तो फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरों पर जो खुदा ने एहसान किए हैं उनके ऊपर, उनको जो नेमतें दी, अलबत्त वो नेमतें भी क्या है, हकीकत वो इम्तहान की वजह से, ऐसा नहीं कि उनको दे दिया है, किसी को कोई चीज़ मिली हो, कोई नेमत मिली हो तो ये समझे कि मेरी अपनी है, नहीं। उन किसी खुदा के कानून यही है कि लोगों को, बाज लोगों को देख कर, बाज लोगों को चीज़ें उनसे जो है वो लेकर उनको आजमाता है। जिनको दी जाती नेमत उनका, उनके जरिए से इम्तिहान लिया जाता है कि जिनको महरूम रखा गया। तो फरमाते हैं कि हसद करने वाले उनमें करार उन फजाइल के वजह से कि जो खुदा ने दूसरों को दिए हैं, हासिद ना बनना, इन झूठे मुद्दयान इस्लाम का इतबा ना करना कि जिनके गंदे पानी को अपने साफ पानी में मिलाकर पी रहे हो। यानी मिसाल देना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो साफ और शफाफ और जो बगैर किसी कुदूरत के, बगैर किसी मिलावट के जो दीन तुम तक पहुंचा है, जो हिदायत तुमको मिली है, जो तालीमात इस्लामी है, उसको इन लोगों की गलत तालीमात के साथ मिलाकर इसको जो है आपस में इसको खराब ना करना, बल्कि वो जो इस्लाम नाब है, जो हकीकी तालीमात हैं दीन इस्लाम की, उसके साथ इंसान जो है उसी को अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की कोशिश करे। और इन लोगों की ये जो गलत लीडर्स हैं, जिनने अपने आप को बिला वजह, बगैर किसी बेस के, बगैर किसी ऐसी फजीलत के जिनके अंदर हो, बगैर किसी उस इजाजत के, बगैर इज्न खुदा के अपने आप को इस माशरे के ऊपर जो है थोपना चाहा है, तुम इन लोगों की इताअत ना करना। वला तुतीउ अलअदिया अल्लज़ीना शरिबतुम बिसफ्विकुम कदरहुम। और ये उन लोगों फरमाते हैं कि वो लोग जो कि इस तरह से मिलावट करते हैं और इस तरह से चीज़ों को जो है वो गदला कर देते हैं, जिनकी बीमारियों को तुमने अपनी सेहत के साथ मखलूत कर दिया और जिनके बातिल को अपने हक में शामिल कर लिया। तकरीबन तमाम जुमलात के अंदर उसी चीज़ का बयान फरमा रहे हैं कि इस जो मिक्स कर दिया इन लोगों ने चीज़ों को, हक और बातिल को जो मिक्स कर दिया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हसास रहना, क्योंकि आमतौर पर ये जो बातिल जो रहनुमा हैं, जो तुम लोगों को अपनी इताअत की तरफ बुलाते हैं, उनका काम यही होता है हक और बातिल को जो है इस तरह से मिक्स करके पेश करते हैं कि इंसान सही तरह से तशखीस नहीं दे पाता। और बाज उनकी जो नारे जो हैं, बाज उनके जो स्लोगन्स हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसके उस फितनों में आ जाता है। और हकीकत तो उसके अंदर, उसके पीछे जो सारे जो पुश्त सहने जिसे कहते हैं, उसके पीछे जो कुछ हो रहा होता है, वो हमारे इंसान की नज़रों से जो ओझल हो जाता है और इंसान समझता है हाँ ये जो है वो सही बात करने वाला है, और उस दीन हकीकी जो इस्लाम की जो हकीकी तालीमात हैं उसको छोड़कर इन लोगों की इत्तेबा में चला जाता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस तरह से पहले भी इशारा हुआ था खुतबे के शुरू में, कि ये 40 हिजरी का जो है वो, यानी आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम का जो है वो खुतबा है। इस हवाले से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये तालीमात, और ये खास तौर पर इमाम जो बार बार वॉर्न कर रहे हैं कि देखो ऐसा ना हो, देखो ऐसा ना हो, ये उस शफकत शफकत का नतीजा है, उस मोहब्बत का नतीजा है इमाम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से और मोमिनी से रखते हैं, कि उनको बार बार इस बारे में चौकन्ना कर रहे हैं कि, और वॉर्न कर रहे हैं कि इस तरह अपने आप को उन लोगों के हवाले ना करना। कि वहम असासुल फसूक, कि ये वो लोग हैं कि جو فسق و فجور کی بنیادیں ہیں، وہ اخلاص العقول اخلاص العقوق اور نافرمانیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. یعنی جہاں جہاں خدا کی نافرمانی ہے، خدا کی عصیان ہے، ہمیشہ وہیں پہ یہ پائے جاتے ہیں. اتخذہم ابلیس و متایا، ابلیس نے گمراہی کی ان کو جو ہے، کس کے ذریعے سے ابلیس جو ہے وہ گمراہی کا کام کرتا ہے معاشروں کے اندر؟ انہی کے ذریعے سے، انہی کو یہ ٹول بناتا ہے، انہی کے اوپر سوار ہوتا ہے. یہ متایا متایا ضلال، اتخذہم ابلیس و متایا ضلال و جندن بہم، اور انہی کے ایسے ان کو اپنا لشکر بناتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر حملہ کرتا ہے معاشروں پر، اور ان کے ذریعے سے وہ جو ایمان کی جڑیں ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. یسول علی الناس و تراجمتن ینطق علی السنتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے ترجمان ہوتے ہیں اور جن کی زبان سے ابلیس بولتا ہے. در حقیقت یہ انسانوں کی صورت میں وہ شیاطین ہیں، کہ در حقیقت شیطان ابلیس جو ہے انہی کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ اسپوکس مین ہیں، یہ جو ہیں ترجمان ہوتے ہیں ابلیس کے. استراقا لعقولہم، کیا کرتے ہیں؟ تمہاری عقلوں کو چیننے کے لیے اور تمہاری آنکھوں میں سما جانے کے لیے اور تمہارے کانوں میں اپنی باتوں کو پھونکنے کے لیے اس نے تمہیں اپنی تیروں کا نشانہ بنا. ان کے ذریعے سے تمام کام انجام دیے جاتے ہیں. تمہاری عقلوں پر جو پردہ پڑتا ہے، تمہیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، واقعات کو جو ہے مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. وہ جو فتنہ جیسے ہوتا ہی ہے کہ اس کے اندر ایک تیرگی ہوتی ہے، ایک تاریکی ہوتی ہے، ایک گمراہی کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے کہ انسان کو کچھ سوچتا نہیں کہ اس میں یہاں پہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے ذریعے سے استراقا لعقولکم، ان کے ذریعے سے جو ہے تمہاری عقلوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. وہ دخولا فی عیونکم، اور تمہاری آنکھوں میں سما جانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے. ونفثا فی اسماءکم، اور تمہارے کانوں میں انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ پھونکتا ہے. انہی کے ذریعے سے وہ فتنہ جو وسوسے ہیں وہ پورے معاشروں کے اندر، انسانوں کے اندر جو ہے پھیلائے جاتے ہیں. فجعلکم مرمی نبلہ وموطئ قدمہ وما خذ یدہ، بس اس نے کیا کہ اس نے تمہیں اپنے تیروں کا نشانہ اور اپنے قدموں کی جولانگاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنایا. یہ شیطان کس طرح سے جو ہے تم پر وار کرتا ہے، کس طرح سے تم پر حملہ کر آور ہوتا ہے، اور اس طرح سے تمہیں جو ہے گمراہی کی طرف، جس میں خوب مبتلا ہوا ہے، اس کی طرف جو ہے تمہیں لے آنے کی کوشش کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں العبرۃ بالماضین فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرین من قبلکم من بأس اللہ وصولاته وقائعه ومثلاته واتعظوا بمثاب خدوعهم ومسار جنوبهم. فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس سے تم سے پہلے استکبار کرنے والی قومیں پہ جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور ان کا قہر نازل ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو. ان کے رخساروں کے ان کے جو کس طرح سے وہ لوگ خاک میں مل گئے، کس طرح سے جو ہے وہ ذلیل ہو گیا، کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے مستکبرین کے اس معاشرے کے اندر، جہاں پہ مستکبرین جو ہیں، جہاں پہ تکبر کرنے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والے افراد جب اس معاشرے کے لیڈر بن گئے اور اس معاشرے کے امام بن گئے اور اس معاشرے کو جو ہے ان کی اس کو بھاگ دوڑ کر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ان لوگوں نے جو ہے ان کا اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ استعیذ باللہ من لواقع الکبر کما تستعیذونہ من طوارق الدہر، اللہ کی بارگاہ میں تکبر کی پیداوار کی منزلوں سے اس طرح پناہ مانگو جس طرح زمانے کے حوادث سے پناہ مانگتے ہیں. بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ جو ہے وہ جب طبیعی طور پر جو برائی مسائل پیش آتے ہیں معاشرے میں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، اس طرح کی کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، تو کس طرح سے اپنی حفاظت کے لیے پریشان ہوتے ہو، اس کے لیے جو چارو جوئی کرتے ہو، اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو؟ بس تعید باللہ من لواقع الکبر، تو اسی طرح سے جو ہے تم جس طرح سے ان تمام طبیعی اور جو نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے کوشش کرتے ہو. فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تکبر کی پیداوار کی منزلوں سے بھی اسی طرح سے پناہ مانگو، کہ یہ درحقیقت زیادہ جو ہے تمہارے لیے نقصان دہ، تمہارے لیے وہ جو ہے ایک اگر کہیں پہ سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، تو ممکن ہے بعض انسانوں کی جانیں چلی جائیں، لیکن اگر کسی قوم کے اندر اس طرح سے تکبر کی جو ایک بیس، ایک بنیاد ہے، وہ جو جڑیں ہیں، اگر وہ آ جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ کیا ہوگا، پھر پورا معاشرہ جو ہے نافرمانی کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ جو بار بار اسی مطلب کو جو ہے اس خطبے کے اندر جو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی اہمیت اسی لیے سب سے زیادہ ہے کہ اس روٹ کو امام علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر بیان کیا، کہ انسانوں دیکھو کہ نافرمانی کا ریشہ کیا ہے، نافرمانی کی روٹ کیا ہے، اس کے جڑیں کیا ہیں. در حقیقت وہی تکبر ہے، کہ جو ہم ممکن ہے ایک انسان جو ہے اپنی ظاہری زندگی میں سمجھے کہ میں تو بہت متوازن انسان ہوں، لیکن نہیں، اس کو ہم ظاہری جو انسان کا جو ہے کسی کے ساتھ اچھی طرح سے مل لینا، ظاہری طور پر انسان کا جو ہے وہ جھک کے مل لینا، یہ فقط کافی نہیں ہے. बल्कि देखा जाए कि आया अगर उसकी जिंदगी के अंदर जरा से भी नाफरमानी है खुदा की, तो उसकी रूट हतमन जो है एक तकबर के अंदर है। क्यों जो है इंसान तकबर कर जो है नाफरमानी करता है खुदा की, क्योंकि उसके मुकाबले में लेके आता है अपने आप को, जो है समझता है कि नहीं मैं क्यों जो है वो सर झुकाऊं, मैं क्यों जो है सर तस्लीम खम करूं। जो जो काम शैतान ने किया कि गरचे वो सब कुछ देखते हुए भी कि हाँ खुदा की इज्जत और उसके जलाल सब कुछ को देखते हुए, लेकिन उसने बिलाकर सजदा नहीं किया। हालांकि उसको जो है वो खुदा के आगे जो कुछ भी वो कहता उसकी बात कबूल करना चाहिए था, लेकिन वो जो अंदर एक तकब्बुर था, वो चीज़ जो उसके लिए नहीं थी, वो हृदय किबरिया जो उसके लिए नहीं थी, उसको जबरदस्ती जब ओढ़ने की कोशिश की, उस तरह से नाफरमानी जो है वजूद में आती। फरमाते हैं कि इससे इंसान जो है वो ज्यादा ठीक है, तुम अपने जमाने के अंदर जो मुश्किल बलाएं आती हैं और जो तभी जो हादसा होते हैं उससे अपने आप को बचाते हो, लेकिन इससे जो है उस इससे भी जो है उसी तरह से डरो, उससे अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करो। फल और रखस अल्लाह फिल किबर ले अहद मिन इबादिही लरखस फीह लखसासत अंबिया लखसासत अंबिया ही व औलिया ही वलकिन्नहु सुभानहु कर रहा इलैहिम तकाबर व रदिया लहुम तवादो। फरमाते हैं कि अगर परवरदिगार तकबर की इजाज़त किसी बंदे को दे सकता तो सबसे पहले अपने मखसूस बंद अम्बिया को जो है वो और अपने औलिया को इस बात की इजाज़त देता। अगर तकबर जायज़ होता तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके अंदर बिलाखिर तुमसे तो कहीं ज्यादा असल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर जो है कंपेयर करना चाहो तो कहाँ तुम लोग और एक आम इंसान, और कहाँ वो खुदा के औलिया और अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, तो उनका जो आम इंसानों से कोई कंपेरिजन ही नहीं है, जो जिनके लिए सब दुनिया ही जो इनके लिए खल के लिए इन मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए जिनके पास इतनी फजीलतें हैं। तो अगर कोई तकबर का हकदार होता है इस दुनिया में तो फिर ये लोग होते हैं, लेकिन खुदा ने उनके लिए भी इसको कबूल नहीं किया कि वो भी तकबर नहीं कर सकते। तुम लोग जो है वो असलन किसी भी तरह से तुम ये सोचो भी नहीं कि जो है तकबर इंसान करे और खुदा जो है उससे राजी हो सके। असलन ऐसा फेल है कि जिसपे कभी भी खुदा जो है राजी नहीं होता। अगर खुदा राजी हो सकता तो अपने खास बंदों के लिए इस बात को इजाजत देता, परदिगार तकबर की इजाजत देता तो इन लोगों को सबसे पहले देता, लेकिन इससे बेनियाज, लेकिन उसने हत्ता उन लोगों के लिए भी जो है वो तकबर को पसंद नहीं किया। फिर फरमाते हैं कि फसफ बिल अर्ज फअलसकु बिल अर्ध खुदूदहुम व अफ़रु फि तुराब वजूहहुम व खफ़ज़ु अजनहतहुम लिलमुमिनीन व कानू कौमन मुस्तज़फ़ीन कद इख्तबरहुम अल्लाह बिल मखमसते व इब्तलाहुम बिल मजहदते व इम्तहनहुम बिल मखावफ व मखदहुम बिल मकारह। फरमाते हैं कि ये लोग किस किस्म के लोग थे, जिन लोगों के लिए खुदा ने जिनकी इतनी फजीलत है इस दुनिया के अंदर उनको करार दिया, अम्बिया करार दिया, औलिया करार दिया, मासूमीन अलैहिस्सलाम, ये तमाम लोग जो है कौन है, इन्होंने अपनी इस तरह से जिंदगी गुजारी, इनके तवाज़ो का ये आलम था कि इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अपने रुखसारों को जमीन से चिपका दिया, यानी उस हद तक जो है तवाज़ो, इतना ज्यादा जो इंसान का झुका हुआ होना, इतना ज्यादा गिरा हुआ होना। फरमाते हैं कि अपने रुखसारों को जमीन से चिपका दिया और अपने चेहरों को खाक पर रख दिया और अपने शानों को मोमिनीन के लिए झुका दिया, इस तरह से मोमिनीन के आगे जो है वो मुतवाजे थे। और हम देखें जरा सा इंसान जो है अपनी जिंदगी के अंदर कुछ जरा सा उसको खुदा जो है माल दे दे, कुछ दौलत दे दे, कुछ मकाम दे दे, तो इस हद तक अकड़ जाता है, अगर जाहिरी तौर पर ना भी हो तो अंदरूनी तौर पर जो है उसके अंदर एक जो तकबर आ जाता है। और वो बहुत सारी चीज़ों को, इस तकबर की एक निशानी क्या होती है कि चीज़ों को अपने लिए अपने आप को हकदार समझने लगता है इंसान, कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। देखें आप इसी इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर, जिनकी आज शब शहादत है, जब इमाम अलैहिस्सलाम मसनद खिलाफत पर आते हैं तो कितने ही लोग जो हैं वो जो शुरू में बहुत दावा कर रहे थे कि हम आपके साथ देंगे साथ देंगे, फ़ौरन ही जैसे इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमत शुरू होती है और इमाम अलैहिस्सलाम अदल करना चाहते हैं तो फ़ौरन जो है ये लोग, इनके अंदर ये चीज़ आ गई थी कि हम हकदार हैं, हमने जो इस्लाम की जो है बड़ी खिदमत की और हमारी वजह से इस्लाम फैला, और अब जो है अपना हक जो है मांगने के लिए जरूरी, कि खुदा की बारगाह में किसी को हक हासिल नहीं था, तुमने अगर किसी ने खिदमत की थी तो उसका वजीफा था, उसकी जिम्मेदारी थी, नहीं कि आप जो है इंसान जो है खुदा के ऊपर जो है एहसान जताने लगे और उसके खलीफा के ऊपर, उसके इमाम के ऊपर जो है एहसान जताने लगे कि हमने जो कि ये खिदमत अंजाम दी है तो हमें जो है दूसरों पर जो है फौकियत जो है वो नसीब हो। ऐसा ये क्यों होता है कि इंसान के अंदर दर हकीकत वो तकब्बुर होता है, दर हकीकत अपने आप को बड़ा समझ लगता है कि जिसकी वजह से उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपने आप को हकदार समझने लगता है। फरमाते हैं कि अंबिया किस तरह से थे, अंबिया और औलिया अलैहिस्सलाम जो है किस तरह से थे कि इस हद तक जो है मोमिनीन के सामने अपने आप को जो है मुतवाज़े थे, ये सब समाज के वो कमजोर बना दिए जाने वाले अफराद थे जिनका खुदा ने भूख से इम्तिहान लिया। देखिए खुदा ने इन तमाम अपने अजीजों जो अजीज बंदे हैं, जो नजदीकी बंदे हैं, इनके लिए भी दुनिया को इसकी आसाइशों को इस तरह से मोमिनीन के लिए जो जिन्होंने खुदा के रास्ते में जो कुर्बानी अता जो अंजाम दी, तो उनके लिए भी खुदा ने ऐसा नहीं कहा कि जब उन्होंने ये काम किया और कुर्बानियां दी तो दुनिया उनके लिए जो है बिल्कुल सिमट कर आ गई हो और उनके पास जो है तमाम आसाइशें आ जाए, जिंदगी आसान हो जाए। नहीं, फरमाते हैं कि खुदा ने इन लोगों का इम्तिहान लिया और उनकी जिंदगी के अंदर जो है मुमकिन है जाहरी तौर पर जो हम देखें क्या सख्तियां ही सख्तियां थी। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखें कि बचपन से लेकर उनकी शहादत तक कहाँ पर हमको मिलता है कि वो उस जिंदगी के अंदर जो है कुछ सुकून आया हो, जिंदगी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं लग्जरीज आई हो, जिंदगी के अंदर आराम आया हो, जिंदगी के आसाइश आई। नहीं, पूरी जिंदगी जो है अजीब अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, पूरी जिंदगी जो है वो आपने सर्फ कर दी खुदा की इस इस्लाम को, इस दीन को जो है वो फैलाने के लिए। लेकिन कभी भी ये नहीं इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जो है वो बस हो जाए, अब जो है मुझसे कितना जो इम्तिहान लिया जाएगा, कितनी सख्ती आएगी, कितनी मुश्किल आएंगी, कितना लोग मुझे जो है वो मुझसे बेवफाई करेंगे, कितना जमाना बेवफाई करेंगे। नहीं, असल तो आखिर वक्त तक भी, और फिर इस जिंदगी के ऊपर किस तरह से जो है जो शख्स पूरी जिंदगी इस तरह से गुजार दे जिसको लोग उसके हक को ना माने और जिससे इस तरह से बेवफाई करें, जिसको पहचाना ना जाए जमाने के अंदर, और वो तमाम इन रुखियों के बावजूद और तमाम बेवफाई के बावजूद जब वो उसको इस तरह से शहीद कर दिया जाए और आखिर में जुल्म के साथ जो शहीद कर दिया जाए तब भी वो कहे कि मैं कामयाब हूँ। इसका मतलब है कि किब्र का और तकबर का एक जर्रा भी इस जात के अंदर नहीं है जो खालिस है खुदा के लिए, वरना जरा सा इंसान जो है वो कोई अच्छा काम करे फौरन उसकी जिंदगी में मुश्किल आ जाए तो इंसान जो है शिकवा करता है खुदा के लिए, मैं हम तो इतने हमने तो इतने नेक काम किए और इतना वो किया और इतना इन्फाक किया और इतना सदका दिया और इतनी नमाजें पढ़ी और इतना नहीं मतलब क्या क्या कर लिया और हमारी जिंदगी में अब क्यों मुश्किल आ रही है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उस शख्स के साथ तो उसकी जिंदगी तो आसान है, मेरी जिंदगी में क्यों मुश्किल आते हैं। लेकिन देखें ये कहते हैं फुस्तो रब्बिल काबा, इन तमाम मुश्किल के बाद जो जरबत लगती तो कहता है कि मैं कामयाब होगी जी। यानी माँ सलाम यानी एक ऐसी मखलूक है जिनको इंसान ऐसा समझ ही नहीं सकता कि जो है ये किस किस्म की का इंसान था नहीं था। इस हद तक इंसान जब इनकी जिंदगी में गौर करता है तो संदंग रह जाता है कि किस किस्म की जिंदगी एक इंसान की भी हो सकती है। फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो इनके इम्तिहान जो है खुदा ने भूख से इम्तिहान लिया, इनका मसाइब से आजमाया, खौफनाक मराहल से इनका इम्तिहान लिया, इनको उससे गुजारा, नाखुशगवार हालात में इन्हें तहुबाला करके देखा कि खुदा जो है अपने नज़दीकियों को अपने करीबियों को इस तरह से इनकी ज़िंदगी को तहुबाला करता है, जो अल्फाज इमाम फरमाते हैं इस तरह से उनकी ज़िंदगियों के अंदर मुश्किल आती हैं और ये खुदा की मोहब्बत की अलामत होती है। ना कि इंसान जो है खुद उससे कहे कि ये क्या मेरी ज़िंदगी जो है मुश्किल में, खुदा की जो मुकर्रब तरीन बंदा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, मुकर्रब तरीन जो बंदा है खुदा का उसकी ज़िंदगी फरमाते हैं कि जितनी अजियत मुझे हुई किसी को नहीं हुई। इंसान जो है और जितने फख्र के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उसी तरह फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम जो उनके नायब बरहक इनकी जिंदगी जिंदगियों का अगर देखा जाए तो इस हद तक सख्तियों की जिंदगी कि इंसान असल सोचता है तो जो है उसके उस बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनका खुदा इस तरह से इम्तिहान लेता है। फला तअतबरू अर्रिदा वस्सख्ता बिलमाल वलवलद जहलन बिमवाक्किल फितना, फरमाते हैं कि खबरदार खुदा की खुशनुदी और नाराजगी का मयार माल और औलाद को करार ना देना कि अगर किसी की जिंदगी में देखो कि माल है तो उसका मतलब खुदा उससे खुश है, किसी को खुदा ने औलाद ज्यादा दी है तो खुदा उससे खुश है, किसी के पास माल नहीं है फकर और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा है उसका मतलब है कि खुदा उससे राजी नहीं है, उसका तो कोई मयार ही नहीं है, उसका तो कोई मकाम ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमीर मोमिन की जिंदगी क्यों फकर में गुजरती, अगर ऐसा होता तो रसूल खुदा की जिंदगी क्यों फकर में गुजरती। फरमाते कि माल और औलाद को कभी इस तरह से जो है मयार करार ना देना कि तुम फितने की मंजिलों को नहीं पहचान, तो नहीं जानते कि खुदा किस तरह से फितने यहाँ पे यानी इम्तिहान की जो जगह खुदा किस तरह से इम्तिहान लेता है हमें नहीं मालूम, कभी इंसान को देकर इम्तिहान लेता है, कभी उससे लेकर इम्तिहान लेता है, तो ये चीज़ें असलन को मेयार नहीं है कि माल और औलाद का होना या ना होना, और तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा मालदारी और इकतदार से किस तरह से इम्तिहान लेता है, किसी को जो है वो इकतदार देता है, किसी से इकतदार छीन लेता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसानों की ज़िंदगी में आती रहती हैं लेकिन ये मेयार नहीं बनता इंसान का खुदा के नज़दीक होने या उससे दूर होने का। वक़द क़ाल सुबहानहू व तआला अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून, फिर इस आयत को जो है कोट करते हैं कि क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर हम किसी को माल और औलाद देंगे तो हम जैसे उनकी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं, नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्ला ये लोग इस शऊर नहीं रखते कि आखिर ये नेकियों इन इन आसाइशों का जिंदगी में आना, इस माल और औलाद का आना इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, बल्कि जे बसा इंसान जो है वो इन माल और औलाद और बाकी जो नेमतों की जो माल और औलाद का जिक्र इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा वाजे जो नेमत इंसान की जिंदगी में है यही होती है, लेकिन अगर जितनी भी नेमत खुदा दे रहा है तो बहुत सी मरतबा उन लोगों को ही नीमत दी जाती है कि जो खुदा से दूर होते हैं, और खुदा इतना ज्यादा जब देख लेता है कि ये मुझसे नजदीक नहीं आ रहे और जो गुमराह होते चले जा रहे हैं और उनका कोई तमाम उनके ऊपर जिसे कहते हैं हुज्जत तमाम हो जाती है और कबूल नहीं करते हक को, तो इन नेमतों को मजीद बढ़ा देता है कि लोग और जो है वो इन पर हुज्जत तमाम हो जाए। तो ये कोई अलामत नहीं होती कि इंसान वो शख्स जो कि उसके पास इतनी नेमतें मौजूद हैं उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही नहीं, उसकी जिंदगी शायद और ज्यादा बदबख्ती की जिंदगी है। फ़इन्नल्लाह सुबहानहू यख्तबिरु इबादहु अल-मुस्तकबिरीन फी अनफुसिहिम बिऔलियाइही अल-मुस्तदअफीन फी अयुनिहिम। खुदा फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने अपने को ऊंचा समझने वालों के इम्तिहान अपने से कमजोर करार दिए जाने वाले औलिया के जरिए से लेता है। और फिर यहाँ पर जब ये बात कहते हैं कि मुस्तकबरीन जो है उनका इम्तिहान किस के जरिए से लिया जाता है, वो औलिया जो बज़ाहिर बहुत ज्यादा जिनकी जिंदगी जो है जैसे कहते हैं कि जाहिरी लिहाज से एक मुश्किल और फ़क्र की जिंदगी है, पस्त पस्त जिंदगी है, जाहिरी इम्कान के लिहाज से उनके पास इम्कान नहीं है, ऐसे अफराद जिनका माशरे में उनको जो है मुस्तज़फ़ और फ़कीर और जैसे कहते हैं पिसा हुआ जो तबका है, इस किस्म के अफराद से खुदा इन मुस्तकबरीन का इम्तिहान लेता है कि ये लोग क्या इनके साथ इनका रवैया होता है, क्या उनका सलूक होता है। फिर यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो जो है उस किस्से की तरफ, उस दास्तान की तरफ जो इशारा फरमाते हैं, कहते हैं कि वलकद दखला मूसा इब्न इमरान व माहु अखूहु हारून अलैहिस्सलाम, के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ जो फिरौन के पास जाते हैं तो वालेहिमा मदार उस सूफ है, उनके जो कपड़े थे वो ऊनी जो कपड़े थे मोटे कपड़े ऊनी कपड़े, वह ऐदी हिमा अलसीयो उनके हाथ में जो है वो एक असा जो था जिससे वो, चूंकि दोनों चरवाहे हैं और चरवाहे के हाथ में जो है वो क्या होता है असा होता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसी हालत के अंदर उसी कपड़ों के अंदर, ऐसा नहीं कि जब वो अब जा रहे हैं उस अपने ज़माने की उस ताकत के पास उस मुस्तकबिर के पास कि उसको जो है वो खुदा की तरफ लेकर आए उस खुदा का पैगाम उसको पहुंचाएं, तो जैसे बहुत ज़्यादा बन सवर के जाएं और अपने लिए जो है वो एक खास किस्म का लिबास को मुहैया करें और ताकि अपनी एक शान शौकत जो ज़ाहरी शान शौकत है उसके साथ जो नहीं उनके वो चरवाहे हैं उनके पास असा था और कपड़े उनके जो है वो ऊनी कपड़े जो बहुत ज़्यादा सादा इस किस्म के कपड़े वही अपने लिबास के अंदर जो है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते हैं और क्या कहते हैं फैशारत अल्लाहु इन असलमा बका मुल्क ही व दवामा इज्ज़ ही, और उससे कहते हैं कि अगर तू इस्लाम ले, अगर तू खुदा के सामने जो है उसकी तस्लीम हो जा और उसकी बात को मान ले, उसकी फरमाबरदारी में आ जा, उसकी इताअत में आ जा, तो हम तुझे तेरी सल्तनत की से की कंटिन्यूशन की उसकी जो है इदामे की जो है उसके जो है वो मजीद यानी उसकी बका की जो है गारंटी देते हैं। अब दो चरवाहे और इस हालत के अंदर अपने उसी जाहिरी हालत के अंदर कि जो चरवाहे की होती है अपना असा लेकर अपने जमाने के उस शख्स के जो इद्दया करता है रुबूबियत का कि अना रब्बुकुमुल आला का जो इद्दया करता है उसके सामने आके कहें कि अगर तू तस्लीम हो जा और इताअत खुदा के अंदर आ जा तो हम तुझे जमानत देते हैं तेरे तेरे मुल्क की और तेरे सल्तनत की बका की। ये कहना ये कितना बड़ा इम्तिहान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, इस तरफ से भी आप देखें कि उस नबी का खुदा कह रहे जाओ जाके ये बात पहुंचा दो। अब उस नबी के अज़्म का आप देखें, फरमाते हैं कि जाहिरी तौर पर हम कोई औलिया और जो अंबिया हैं हमको क्या नजर आते हैं कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा सादे हैं, बहुत ज्यादा मुतवाजे हैं, बहुत ज्यादा जो है इनकी जिंदगी के अंदर फक्र फाक और ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन इनका अज़्म देखें कि खुदा इनसे जब कहता है कि काम करो तो किस अज़्म के साथ जो है किस इरादे के साथ जाते हैं, यहाँ से पता चलता है इनकी बड़ाई, यहाँ से पता चलता है कि एक आम इंसान जो है कहाँ और ये औलिया और अम्बिया अलैहिस्सलाम कहाँ, यहाँ से फिर इंसान उनके सामने जो है उनकी अजमत का इकरार करता है कि ये कितने किस किस्म के अफराद थे अपने अज़्म के लिहाज से। और अपने अजीब है ये वाकया भी जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये वाकया है कि जो कहा जाता है कि जाएं तो जाहिर बात है उस जमाने के जो बादशाह है फिरौन अपने उस गुरूर के अंदर और तकबर के अंदर, और इस तरह तो नहीं है कि हर इंसान जो है जो जिसको भी इजाज़त हो वो सर उठाए जो है उसके दरबार में चला जाए, नहीं जाहिर बात है कि उस शान शौकत का जो उसने इद्दया किया है और गलत इद्दया किया है झूठा इद्दया किया है तो उसका जो जो भी प्रोटोकॉल है उसको उसके बगैर तो इंसान वहां उसके पास नहीं पहुंच सकता। तो उस जो अहादीस में जिस तरह से बयान होता है कि जिस तरह से बादशाहों के पास एक कुछ होते थे अफराज जो उनको हंसाया करते थे और उनके जो तफरी और एंटरटेनमेंट का जो है वो काम किया करते थे, तो फिरौन के पास भी जो है एक ऐसा शख्स था कि जो जब उनका ऐसे मौाक़ों पर जो है वो जो हंसाने का काम और इस तरह के काम अंजाम दिया करता था, जो मुख्तलिफ एक्टिंग्स किया करता था मुख्तलिफ जो है अदाएं निकाल के और इस तरह था कि इनको खुश रखा जाए। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जब आते हैं दरबार के उस यानी उस जब भी महल था उसकी उस पैलेस के जो दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, ऐसा नहीं था पहले दिन ही जो इनको इजाजत मिल गई और इस तरह से नहीं, कितना ही इन्होंने इंतजार किया नहीं मालूम, याद नहीं मुझे, और रिवायत के अंदर जो अल्फाज थे कि कितने दिनों तक जो है वो ये तुलानी ये एक इंतजार था, उसके बाद फिर जो है वो जो है वो दरबार के अंदर जाना मिलता है। किस तरह से मिलता है वो भी ये होता है कि वो शख्स जो कि ये जो जो क्लाउन टाइप का एक आदमी है और जो हंसाने का काम अंजाम देता है, वो जब देखता है एक दिन के ये यानी इस तरह से ये अफराद यहाँ पे बैठे हैं और हाथ दो चरवाहे और हाथ में असा है और इस तरह के कपड़े पहन के, उनसे पूछता है क्या मसला क्या है, तो कहते हैं कि हम लोग इस तरह से बादशाह के लिए पैगाम लेकर आए कि वो तस्लीम हो जाए, और इस तरह तो ये शख्स जो है इसको इतनी ज्यादा हंस यानी उसके लिए चीज अजीब होती है और बायस यानी मसखरे के बायस होती है कि जाते हैं और कहते हैं आज मैं इसी के जरिए से जो है वो फिरौन को हंसाने की कोशिश करूंगा, और इस तरह से उनकी एक्टिंग करता है कि जिस तरह से जो है वो जो जिसने देखा होता है बिल्कुल उसको उसी तरह से एक्ट करता है। लेकिन फिरौन जब इस चीज सुनता है कि ये जिस तरह से बात कर रहा है तो मालूम करता है कि वाकई ऐसा कोई है, तो कहते हैं हाँ वाकई जो है इत्तेफाक से दरवाजे पे इस तरह से दो लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है फिरौन कहते हैं अच्छा उनको जरा लाया जाए, देखूं मैं ये लोग क्या कहते हैं। अब जो है वो उन लोगों को इस तरह से इस बहाने जो है वो अंदर आने की इजाजत मिलती है, और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और इस तरह से अपने उस जो पैगाम था खुदा की तरफ से उसको वाज़ह अंदाज में जो है वो इस अज़्म के साथ बयान फरमाते हैं, फकाला अला ताजबूना मिन हाज़ैन शर्तैन, यानी फिरौन कहता है तुम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो ये बात जो है ताजुब तुम्हें अजीब महसूस नहीं होता, तुम लोग ये बात इतनी बड़ी बात जो है ऐसे जो है वो मुझसे आके कर रहे हो, यानी मुझे गारंटी दे रहे हो मेरी हुकूमत की, तुम लोग यानी 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 कम से तुम लोग हो कौन, एक दो चरवाहे आके आप मुझे जो गारंटी देंगे कि मेरी हुकूमत की बका की, अल्लाह ताजबुन मिन हादैन हादैन यशतर यशरतान ली दवाम अल इज्ज़, अलबत्ता ये फिरौन जो है लोगों से कहता है लोगों से मुखातिब होकर कहता है तुम लोग ताजुब नहीं करते कि ये दो लोग इस तरह से आए और मुझे जो है वो गारंटी दें, क्या तुम लोग इन दोनों के हाल पर ताजुब नहीं कर रहे जो इस फक्र फाके की हालत में मेरे पास आते हैं और मेरे मुल्क को दवाम की जमानत दे रहे हैं, अगर ऐसे ही ऊंचे हैं तो इन पर सोने के कंगन क्यों नहीं नाजिल हुए। ये फिर वो थिंकिंग जो दोबारा से ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कि जो उस जमाने की हुई है, हर जमाने के अंदर ये चीज पाई जाती है कि इंसान किस चीज पर जो है गुरूर करता है, किस चीज पर किस चीज को बड़ाई का जो है मेयार बनाता है, कि अगर इंसान के पास दौलत है माल है तो उसका मतलब बड़ा है, उसके पास मकाम है तो उसका मतलब बड़ा है, अगर कोई फक्र फाकर की जिंदगी गुजार है इसका मतलब है कोई मकाम उसका नहीं है। तो फरमाते हैं कि तुम लोग क्या ताजुब नहीं करते कि वहमा बिमा तरौना मिन हालिल फक्र है, तुम नहीं देखते किस हालत फक्र के अंदर है वज़ुल है, पहला उल्किया अलैहिमा सावरतुम मिन ज़हबिन इक़दामन लिज़हबिन, बस क्यों जो है अगर ऐसा ही है कि अगर वाकई खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हैं और उसके नुमाइंदे हैं तो क्यों उनके हाथों में मैं सोने के जो है वो मसलन कड़े नहीं देख रहा, और जो भी उस जमाने में पहने जाता था जेवर, क्यों उनके हाथों में ऐसा नहीं है, इनके इन पर सोने के कंगन क्यों नहीं नाजिल हुए, इनकी नजर में सोना क्यों, ये कहता है क्योंकि उसकी नजर में सोना और ये तला और जवाहरात जो है क्या है यही जो है वो बड़ाई की अलामत है, इसकी नजर में सोना और इसकी जगह जमावरी का अजीम कारनामा था और ऊन का लिबास पहनना जिल्लत की अलामत था, जब जाके फिरौन इस तरह से कहता है, हालांकि अगर परवरदिगार चाहता तो अम्बिया कराम की बेसत के साथ इनके लिए सोने के खजाने तलाए खालिस के मादिन बागात इस तमाम चीजें खुदा इनके लिए नाजिल कर सकता था, खुदा के लिए कोई मुश्किल था ये काम करना, कहते मूसा अलैहिस्सलाम को इन तमाम जवाहरात के साथ तमाम ऐसे शान शौकत के साथ जो है वो दरबार में भेजता, नहीं हो सकता था कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन खुदा इस तरह से अपनी आयात को और अपने इस पैगाम को भेजता है इन अंबिया के साथ, और इनका इस इनका भी इम्तिहान है और उस मुस्तकबिर का भी इम्तिहान है कि तुम जो है किस चीज़ को मेयार बनाते हो, और लोगों का भी इम्तिहान है कि तुम्हारी नज़र में जो जो मेयार है वो गलत मेयार है, तुम जो है बजाय इसके कि दलील को देखो बुरहान को देखो कि उस वाजे जो हक हक है उसको देखो, तुम जो है वो सोने और चांदी और इन जवाहरात की तरफ जो है जाते हो, इंसान की जो है इस तरह से सबका इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है सबका इम्तिहान खुदा इस तरह से लेता है कि खुदा अगर चाहता तो खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं था इन सब के लिए, उन तमाम दरवाजों को खोल देता है उन नेमतों के, और उसके साथ फिर जो है ये अम्बिया अलैहिस्सलाम जी जिंदगी गुजारते और अपने पैगाम को पहुंचाते, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसके नतीजे में जितना भी जो इम्तिहान था वो सारा जो सिस्टम था खराब हो जाता, कि इम्तिहान के अंदर जो अहम तरीन जो अंसर जो शुरू में खुद में बयान हुआ था एक जहालत का यानी जो एक अननोन फैक्टर होना जरूरी है, अगर चीज हर चीज वाजह हो जाए और इस तरह की आयात नाजिल हो जाए कि हाँ ये लोग हक पर हैं तो सब लोग फिर खुद ब खुद जो है इनकी इताअत, और जब वाजह हो जाएगा तो फिर वो इम्तिहान का जो फैक्टर है वो खराब हो जाएगा, और लोग जो है खुद जो है वो उस माल और दौलत और उस अजमत के आगे जो है वो उस अजमत को कबूल करेंगे और जो है अपना सर झुका लेंगे, तो वो इम्तिहान जो होना था जो होना चाहिए था वो उस तरह से نہیں ہو پائے گا. زان محترم, یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے اندر کس طرح سے امام علیہ السلام ان تمام چیزوں کو جو ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے, مختلف داستانوں کے ذریعے سے جو ہم تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان کے دل سے جو ہے تکبر اور یہ جو غرور اور یہ جو کہ جو چیز ہے یہ انسان اپنے دل سے نکال سکے. میرے خیال میں آج چونکہ امام علیہ السلام کی جو شہادت کی رات ہے, اس حوالے سے اس خطبے کو انسان دیکھے, باقی امام علیہ السلام کے جو اور فرامین ہے, باقی پوری زندگی ہے, اس پر انسان اگر غور کرتا ہے تو عجیب ہے کس طرح سے امام علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے آؤں, کسی طرح سے ان لوگوں کو یہ لوگ فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیں, حق کے اوپر آ جائیں, اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیں. لیکن عجیب ہے, امام علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں, جب جیسے ہی جب مسند خلافت پر آتے ہیں اور واضح طور پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم جب میں آؤں گا اور حکومت کروں گا تو تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے, لیکن امام سب لوگ ہیں اس جوش و جذبے کے اندر آ کے کہتے نہیں, امام علیہ السلام آپ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, بیعت کریں گے, اور یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. اور وقت گزرتا ہے, امام علیہ السلام جو ہے وہ جنگ جمل ہوتی ہے, جنگ صفین ہوتی ہے, جنگ نہروان ہوتی ہے, اور یہ اس طرح سے امام علیہ السلام مختلف جنگوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خستہ ہو گئے ہیں. لوگ امام علیہ السلام لوگوں کو بلاتے ہیں, جنگ کی طرف بلاتے ہیں, لوگ اصلاً انکار کرتے ہیں. کتنے ہی ہمارے پاس جو خطبے ایسے ہم کو ملتے ہیں نجیب البلاغہ کے اندر کہ جو اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. بس میں ایک مثال کے طور پر جو ہے یہاں پہ اگر بیان کرنا چاہوں تو مثلا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 39 ہجری کے اندر, یعنی شہادت سے 1 سال پہلے, کہ اب طرف مقابل کی طرف سے جب یہ امام علیہ السلام جنگ صفین سے بھی جو ہے وہ حکمیت کا واقعہ پیش آتا ہے, اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے اور عمرو بن العاص جو ہے وہ ایک کام کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کو خل کر دیتے ہیں, وہاں پہ جو ہے معاویہ جو ہے وہ خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے, امام علیہ السلام کوفہ میں آ جاتے ہیں وہاں پہ شام میں, اور ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے جو ہے وہ حملات ہوتے ہیں, اور جو ہے امام علیہ السلام کی سرزمین جیسے مصر جیسا جو بڑا جو علاقہ تھا, جو امام علیہ السلام کی سرزمین جو اسلامی تھی, اس کا جو اہم ترین جو صوبہ تھا وہ بھی امام علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور اس طرح سے محمد ابن ابی بکر کی جو شہادت واقع ہوتی ہے, اس سے پہلے مالک اشتر کی جو ہے شہادت واقع ہوتی ہے, امام علیہ السلام کے دو عظیم اسی مصر کی حکومت کے حوالے سے جو ہے ان کی شہادت واقع ہوتی ہے, اور اسی طرح بہت سارے واقعات جو ہو رہے ہیں ان تمام کے اندر جو ہے امام علیہ السلام اب جب لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں جنگ نہوان سے, جب امام علیہ السلام پلٹ رہے تھے اور 38 ہجری کے اندر جب پلٹتے ہیں, اسی وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے, جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور خوارج کا فتنہ جو ہے اس کو کچل دیتے ہیں, امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اصل جو فتنہ ہے اصل وہاں پہ ہم لوگ دوبارہ جائیں گے شام کی طرف, اور جو ہے یہ ایک ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اصل جب امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم کو شام کی طرف جانا ہے جنگ کے لیے, تو لوگ بہانہ بنانا شروع کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے ابھی تو ہم نے جنگ سے آئے ہیں, ابھی تو ہم مجروح ہیں, ابھی تو زخمی ہیں, ابھی تھوڑا ٹائم لینے دیں, ابھی تھوڑا ابھی ہم کو تھوڑا سا دوبارہ سے اپنی قوت کو جمع کرنے دیں, اور اس طرح سے مختلف جو ہے بہانے بناتے ہیں. امام علیہ السلام اس حد تک جو ہے وہ ان سے بیزار آ جاتے ہیں, اور کتنے ہی خطبات کے اندر جو ہے اپنی اس بیزاری کا, میں تم لوگ کو بلاتا ہوں لیکن تم اطاعت نہیں کرتے, عجیب ہے. امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری جو ایام ہیں ان ایام سے جو کہ اس رسول خدا کی رحلت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ مظلومیت سے کم مظلومیت نہیں امام علیہ السلام کی, کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کو اس طرح سے لوگ جو ہیں اطاعت کرنے والے جو لوگ ہیں امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, بہت کم افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہیں. تو فرماتے ہیں جیسے اس خطبے کے اندر ہے, خطبہ نمبر 69 کے اندر, کہ کب تک میں تمہارے ساتھ وہ نرمی کا برتاؤ کروں جو بیمار اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس اندر سے جو ہے جس کا کوہان جو بالکل کھوکھلا ہو گیا ہو, اور یا اس بوسیدہ کپڑے کے ساتھ, یا اس جس ایسا برتاؤ کہ جو ایک بوسیدہ کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہو. کلما خیست من جانب تحتکت من آخر, जैसे जब एक तरफ से सिया जाते हैं तो दूसरी तरफ से फट जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की उस उन हालात को बयान फरमाते हैं कि क्या करूं मैं, कभी इस तरह से इस तरफ से इंसान जो है वो उसको सही करने की कोशिश करता है तो वहां से तो एक मसला उठ जाता है, वहां सही करता हूँ तो एक तीसरी जगह से मसला उठ, एक ऐसा बोसीदा कपड़ा कि जिस पे यहाँ पैबंद लगाया जाता है वहां से फट जाता है, वहां पे पैबंद लगाए तो वहां से फट जाता है। इस किस्म के तुम लोग हो कि किसी तरह से इमाम अलैहिस्सलाम जो है उनको हर तरह से कोशिश की इमाम ने ये इनकी इसलाह करने की, इनको हिदायत करने की, लेकिन ये इमाम अलैहिस्सलाम को इस हद तक जो है वो अज़ियत और आज़ार देने वाले। कुल्लमा अतल्ला अलैकुम मनसिरुन मिन मनासिर अहले शाम अगलका कुल्लु रजुलिन मिनकुम बाबहू। और जब भी कहते हैं कि शाम का कोई दस्ता तुम्हारे किसी दस्ते के सामने आता है तो तुम में से हर शख्स अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है, यानी कोई जंग पे जाने को तैयार नहीं है। ये हालात हो गए हैं उन तीन जंगों के बाद। इमाम अलैहिस्सलाम के हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के जो नज़दीकी साथी हैं कितने ही उनमें से शहीद हो चुके हैं, और इसीलिए जो इमाम अलैहिस्सलाम अम्मार और इन लोगों को जो है वो याद करके रोया करते थे। फरमाते हैं कि जब तुम लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हो, कितने इसी जो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर जो है जब वो मिस्र के अंदर होते हैं और उस इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं कि यहाँ पे जो है वो अम्र इब्न आस जो एक बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है 6,000 का, मुझे जो है लश्कर की जरूरत है, मुझे एक पुष्पनाई की जरूरत है। तो इमाम से कहते हैं ठीक है तुम जाके लड़ो, मैं यहाँ से जो है तुम्हारे लिए उसका बंदोबस्त करूंगा। जब इमाम अलैहिस्सलाम जो है अभी वहां पे मोहम्मद इब्न अबी बकर को शहीद कर दिया जाता है, इमाम अलैहिस्सलाम तक कोई इत्तला, जारी बात उस जमाने में इतने तेजी से इत्तलात नहीं मिलती थी। इमाम अलैहिस्सलाम अभी यहाँ पे लोगों को जमा करने ही में जो है टाइम निकल जाता है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर शहीद हो जाते हैं। 50 दिन जो है जारन एक हदीस के अंदर एक उसके मुताबिक रिवायत के मुताबिक 50 दिन तक इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो 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 कि चलने को तैयार नहीं होता, कि उस जो है वो आज आखिर में मुश्किल से 2,000 अफराद जो है, मुश्किल से 2,000 वहां से 6,000 अफराद का लश्कर आया सिर्फ एक उसके लिए। और यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम जो है अमीरुल मोमिनी उस जिस जोश जज्बे के साथ जिन लोगों ने बैत की थी, इमाम अलैहिस्सलाम 50 दिन तक कहते हैं तो 2,000 अफराद जो है जमा होते हैं, और फिर जो है वो मालूम होता है कि उनको तो शहीद कर दिया गया। ये इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत। फरमाते हैं कि वन हजरा इन हिजारत दबत फी हुजरहा, कि इस तरह से हो जाता है कि जिस तरह से कोई सुराख के अंदर जो कोई इंसान जो है वो कोई छुप जाए, कोई जो मखलूकात हैं जो अंदर इस तरह से अपना को छुपा लेती हैं कि किसी तरह से जंग और उससे जो है फरार करने के लिए। अज़लीलो वल्लाहि मन नसर तुमू हो जी, फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जलील वो होगा जिसको तुम जैसे मददगार होंगे। इस हद तक जो है इमाम अलैहिस्सलाम इन लोगों से जिसे कहते हैं कि खस्ता हो चुके थे, कहते हैं वो शख्स जो जिनकी तुम नुसरत करने वाले हो कितना जो है वो मन वमन रोमिया बेकुम फकद रोमिया बे अफ वके नासिलिन, जो तुम्हारे जरिए तीर अंदाजी करेगा गोया वो बिल्कुल यानी इस तरह से कोई कारामद नहीं है जिस तरह जो तुम्हारे जरिए तीर अंदाजी करे कि जिसका जो है पैकानी जो है उसका तीर जो है वो कभी निशाने पर ना लगे। इन नकुम वल्ला है लकतीर उन फिलबाहात, तुम खुदा की कसम तुम सैन्य खाने में बहुत दिखाई देते हो, यानी जब जब हालात आदि हों बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत हो, कलील उन तहतर रायात है, लेकिन जब तुमको लश्कर के अंदर एक परचम के नीचे उस लश्कर के अंदर जमा करने के लिए बोला जाता है तो कितने कलील रह जाते हो। वह इन नीला आलिमुन बिमा युसले हुकुम, मैं तुम्हारी इसलाह का तरीका जानता हूँ। वह युकी कुम अवदकुम अवदकुम, और तुम्हें सीधा कर सकता हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से दूसरे जिस तरह हुक्मरान होते हैं जो अपनी आवाम को सीधा करके रखते हैं, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। वलाकिन नीला अरा इसलाह हुकुम बेफसाद नफसी, लेकिन क्या करूं कि अपने दीन को बर्बाद करके तुम्हारी इसलाह नहीं कर सकता, मैं वो जालिमाना तरीके तो इख्तियार नहीं कर सकता कि तुम लोगों को जुल्म करके तुम लोगों पे जब इस तरह से जो है तुम लोगों को जबरदस्ती जंगों की तरफ ले जाऊं और इस तरह से दूसरे हुक्मरान करते हैं, मुझे भी तमाम तरीके जो है मालूम है कि क्या क्या किया जाता है, लेकिन मैं अपने अपने दीन को बर्बाद करके किस तरह से काम कर सकता हूँ। अदरा अल्लाह खुदूद खुदूदकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को जलील करें। देखें ये वो आखिरी उम्र के इमाम अलैहि सलाम के जो हालात हैं, इस हद तक इमाम अलैहि सलाम जो है लोगों से बेजार हो चुके हैं। बात आसा जुदू तकुम, तुम्हारे नसीब को बदनसीब करे इस तरह से। फरमाते हैं कि ला तारिफून अल हक कमारिफतकुम अल बातिल, तुम हक को इस तरह से नहीं पहचानते जिस तरह से बातिल की मार्फत रखते हो। वला तुबतिलून अल बातिल का इब्तालकुम अल हक, तुम बातिल को इस तरह से बातिल करार नहीं देते जिस तरह से हक को गलत ठहराते हो। मैं तुम्हारे सामने हक का एक वली खुदा, एक हुज्जत खुदा, इमाम अमीरुल मोमिनीन, इसको जिंदगी को तुम जानते हो कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है और कब तुम पे जुल्म किया है, कब तुम्हारे साथ जो है कोई बुराई की, तमाम चीजों के बावजूद जो है वो तुम हक को जो है बातिल करने, हक को खत्म करने के लिए जो है वो आमादा हो लेकिन बातिल को खत्म करने के लिए मैदान में नहीं आते। ये अमीरुल मोमिनीन की सख्त यानी जिंदगी का इंसान जो गौर करे तो कब इमाम अलैहिस्सलाम को जो है वो चैन का सांस, सुकून का सांस जो है वो मिला। कितने ही खुतबात में इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो इस तरह से आखिर उम्र के अंदर इन लोगों से थक चुके हैं और कहते हैं कि मुझे खुदा जल्द उठा ले, कि इन लोगों से जो है इमाम से बर्दाश्त नहीं होता, इन लोगों की जो बहानेबाजी लोग करते हैं जिस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देते। और आखिर में शब आती है बिलाखिर के इमाम अलैहिस्सलाम को 19 रमज़ान के सुबह नमाज में जो ज़रबत लगती है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम जैसे वो ज़रबत लगती है तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फुस्त व रब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। अजीब है, फरमाते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगती है तो इमाम हाओ जारी हो गिरियो जारी और चीखो पुकार नहीं करते, बल्कि इमाम हसन आते हैं उस नमाज को कंटिन्यू करते हैं। नमाज के बाद अपने बाबा का सर अपने दामन में लेते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम गिरिया करना शुरू करते हैं। जब गिरिया करते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम के आंसू हजरत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गिरते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तसलियत पेश करते हैं, उनको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, बेटा हसन गिरिया ना करो। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दिलासा देना शुरू करते हैं, बेटा गिरिया ना करो। आखिर इमाम अलैहिस्सलाम को घर की तरफ जो है ले जाया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम एक गशी की हालत में है, बैठा नहीं जाता। इमाम अलैहिस्सलाम से कभी इस तरफ गिरते हैं, कभी उस तरफ गिरते हैं। बिलाखिर इमाम अलैहिस्सलाम कूफे में अपने उस घर पे जब पहुंचते हैं, एक गौगा एक जो है शोर गुल मच जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम जब घर में लाया जाता है, एक गिरियो जारी है। इमाम हसैन अलैहिस्सलाम जो है इस हद तक गिरिया करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को देख के उनको दिलासा देते हैं और कहते हैं बेटा हुसैन गिरिया ना कर और सब्र से काम लो। बिलाखिर घर में लाया जाता है और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ मैं इबादत किया करता था। इमाम अलैहिस्सलाम को उनके मुसल्ला इबादत पर लिया जाता है, उस कुताख में लिया जाता है जहाँ पे इमाम इबादत किया करते थे। यहाँ पर आपकी बेटी है जो आपको देखने के लिए आती है, ज़ैनब उम्मे कुलसुम आती है, अपने बाबा के पास बैठती है और क्रिया करना शुरू करती है। इससे पहले तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देख कर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देख कर अमीर उल्मोमिनीन उनको दिलासा दिया कर रहा था, लेकिन जब अपनी बेटियों को गिरिया करते देखते हैं तो यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम सराहा नहीं जाता और फिर खुद भी गिरिया करना शुरू करते, हाय हाय गिरिया करते हैं। यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब सलाम अल्लाह का गिरिया देख के खुद भी गिरिया करना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं मालूम उस दिन जब बीबी जर उस हालत में जब अपने भाई भी गिरिया कर रहे होंगे, आज इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उनको गिरिया करने से रोक रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, लेकिन उस दिन जब कोई नहीं होगा इस बीबी का चुप कराने वाला, इस बीबी को दिलासा देने वाला, नहीं मालूम उस दिन अमीर मोमिनीन के दिल पर क्या गुजरेगा। खुदा हमारी पहली इस इबादत कबूल फरमा। ए खुदा हमें इमाम अलैहिस्सलाम के ऐसे फरमा बरदारों में से करार दे, ऐसे जानिसारों में से करार दे, ऐसे शियों में से करार दे कि उनके दिल की आंखों की ठंडक करार पाए, उनके दिल का चैन करार पाए। जो मुश्किलात जो अमीरुल मोमिनीन किस तरह से गुजरे हैं, हमारी जिंदगियों को देख कर उनको सुख का सांस जो है नसीब हो, खास तौर पे आज की रात में इस खून पाक का इंतकाम लेने के लिए आपकी आखिरी आखिरी हुज्जत का जल्द ज़हूर हो, ताकि इस तमाम मजालिम का इंतकाम लिया जा सके और हमें खुदा तौफीक दे कि हम उस इमाम के रकाब में